ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायो मुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद 13 अध्याय आज 14 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। 14 नंबर श्लोक से बाकी जो 36 श्लोक तक है प्रभुपाद तात्पर्य दिए नहीं। भविष्य मनु का वर्णन है, जो 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में, तो उनका वर्णन ये अध्याय में है। तो हम तो बहुत सारे श्लोक है, इसीलिए हाँ बोर्ड में देखेंगे। मेरा पीछे पीछे बोलिए। या असौ भगवता बद्ध प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितः अधिके सर्गात् अधुना आस्ते शराटिव। इस श्लोक का अनुवाद, भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उन्हें शीतल राज्य में अधिष्ठित किया, जो स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखमय स्थिति में है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं जो सात ऊर्ध्वलोक सात अधोलोक, हम ऊर्ध्वलोक में जाना चाहते हैं स्वर्ग में, लेकिन इस श्लोक में कहता है अधोलोक में जो शीतल लोक वहां का संपदा स्वर्ग का राजा इंद्र से ज्यादा है। तो अभी स्वर्ग नहीं जाकर शीतल लोक जाना चाहिए। यहां से पता चलता है भौतिक संपदा ज्यादा मूल्यवान नहीं है। पर्वती श्लोक, हे राजन, आठवें मन्वंतर में गालब दीप्तिमान परशुराम अश्वत्थामा कृपाचार्य ऋष्यशृंग तथा हमारे पिता व्यासदेव जो नारायण का अवतार है सप्तषी होंगे। इस समय वे सब अपने अपने आश्रम में निवेश कर रहे हैं। आठवें मन्वंतर वर्णन हो रहा है, इस तरह 14 मन्वंतर वर्णन होगा। मनु अंतर, अंतर अर्थात इस तरह देह अंतर, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर। तो मनु अंतर अर्थात ये मनु का मृत्यु के बाद दूसरा मनु का जीवन, मन अंतर। इस तरह ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो ये भागवत का जो वर्णन है, तो भविष्य में कौन कौन आ रहा है, अभी अष्टम मन्वंतर चल रहा है, कौन सा मन्वंतर चल रहा है, सप्तम मन्वंतर चल रहा है, आगे और सात आएगा, उनके भी वर्णन इसके अंदर है। जिस तरह अभी टीवी में जो देखते हैं मैकगाइवर, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, उनका पिता दादाजी परदादाजी का कोई परिचय नहीं है, उनका आगे बच्चा कौन आएगा उनके भी वर्णन नहीं है। लेकिन भागवत में केवल अभी नहीं, उनका दादा परदादा यह तो कृष्ण से शुरू करके सबका लिस्ट है, और आगे भी कौन आने वाला है वो उसका भी वर्णन है। इससे पता चल रही कितना ऑथेंटिक है। हमें अखबार पढ़ते हैं, 7 दिन पहले का अखबार देंगे तो हम पढ़ेंगे, और सुबह जो अखबार पढ़ चुका है फिर शाम को देंगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, फिर वो अखबार हम पढ़ते हैं। वो जानते हैं एक बार पढ़ने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं है, फिर उसके पढ़ते हैं। कितना पागल आदमी है। स्कूल कॉलेज का जो पुस्तक है कम से कम 1 साल तो पढ़ते हैं, अभी हमको क्लास 2-3 का पुस्तक देखा हम नहीं पढ़ेंगे, समय नष्ट नहीं करेंगे। और यदि कुछ पढ़ेंगे, जिस तरह मेडिकल इंजीनियर का जो पुस्तक है, जो पढ़ कर जो डॉक्टर बनते हैं उनका पुस्तक भी एडिशन चेंज होते हैं। यह तक एनाटोमी, जिसको आदमी पहले 2-6 हड्डी था, अभी भी 2-6 हड्डी आदमी का, फिर वो एनाटोमी भी चेंज होते हैं, एनाटोमी से पुस्तक का भी एडिशन चेंज होता है। लेकिन भागवत 5000 साल पहले भगवत गीता आज तक एडिशन चेंज नहीं हुआ, कितना ऑथेंटिक है। तो जो पुस्तक हर साल 2-4 साल में चेंज होने वाला है, जो अखबार रोजे परिवर्तन हो रहा है, और आपके बारे अखबार में कुछ लिखेगा तो देखिए आधा से ज्यादा गलत है, फिर हम वो खबर पढ़ते हैं। और जो गीता भागवत 5000 साल में आज तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो जरूर आगे 5000 साल कम से कम कुछ परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी हमारे सामने में दो चीज सामने में आएगा, सुबह नींद से उठ के देखेंगे टेबल के ऊपर गीता भागवत और दरवाजा के नीचे अखबार, कौन सा उठा लेंगे? अखबार। तो यह क्या है? यह चतुर्थ अपराध, चतुर्थ अपराध नाम अपराध क्या, चतुर्थ नाम अपराध क्या, वैदिक शास्त्र का अवज्ञा करना। तो जब अवज्ञा था, जिस तरह नेग्लेक्ट करना, किस तरह प्रधानमंत्री है उनके सम्मान नहीं देकर छोटा आदमी को साथ बात कर रहे हैं, उनको कुर्सी दिया, तो इसी तरह श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ते सम्मान में हम अखबार पढ़ते हैं, तो इसका एक प्रकार ग्रंथ को अवमान करना है। तो ग्रंथ में इतना अच्छा वर्णन है। आगे कौन कौन मनु आ रहा है उसके भी वर्णन है। अभी हमारे सप्तम वर्णांतर चल रहा है, सप्तम वर्णांतर में अष्टविंशति चतुर्युग चल रहा है, और 28 नंबर चतुर्युग चल रहा है, अर्थात सत्य तेता दापुर कौली का वो चतुर्युग का कौली युग चल रहा है। इसके बाद फिर 29, 30, 31 तक 71 तक चतुर्युग आए, उसके बाद अष्टम वर्णांतर आएगा, उनके भी नाम वर्णन है इधर में। 8वें वर्णांतर में महान शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे, उनके पिता होंगे देवगुज्ज और माता होंगी सरस्वती। वे सुंदर, वे पुरंदर, इंद्र का आरक नाम है, वे पुरंदर से राज्य सिंहकार उसे बलि महाराज को देंगे। हे राजन, नवा मनु दक्ष सावर्ण्य होगा, जो वरुण का पुत्र होगा, भूत केतु, दीप्त केतु इत्यादि उसके पुत्र होंगे। नवे मनांतर में पार तथा मरीची गर्भ इत्यादि देवता रहेंगे। स्वर्ग के राजा इंद्र का नाम होगा अद्भुत, और द्वितीयमान सप्तऋषियों में से एक होगा। भगवान के अंशावतार ऋषभ देव अपने पिता आयुष्मान तथा माता उम्रधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनेंगे। उपश्लोक का पुत्र ब्रह्म श्रावणी दसवां मनु होगा। भूरिसेन उसके पुत्रों में एक होगा और हविष्मान इत्यादि ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे। हविष्मान सुकृत सत्य जय मूर्ति इत्यादि सप्तर्षि होंगे। सुभाषण गण तथा विरुद्ध गण देवता होंगे और शंभु उन सबका राजा इंद्र होगा। विश्व सृष्टा के घर में विशुचि के गर्भ से भगवान के अंश विशक्षण के रूप में भगवान अवतरित होंगे। वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे। ग्यारहवें मन्वंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे जो अध्यात्म ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उसके दस पुत्र होंगे जिनमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। विहंगम कामगम निर्वाण रुचि इत्यादि देवता होंगे। वैधृत देवताओं का राजा होगा और अरुण इत्यादि सप्तर्षि होंगे। आर्यक का पुत्र धर्मसेतु, आर्यक की पत्नी वैधिता की कोख से भगवान के अंशावतार के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में शासन करेगा। हे राजा, बारहवां मनु रुद्र सावर्णी कहलाएंगे। देववान उपदेव तथा देवश्रेष्ठ उसके पुत्र होंगे। इस मन्वंतर में ऋतोद्धामा इंद्र होगा और हरित इत्यादि देवता होंगे। तपमूर्ति तपस्वी तथा अग्निद्रव सप्तर्षि होंगे। माता सुनीता तथा पिता सत्यसह से भगवान का अंशावतार सधामा उत्पन्न होगा। वह उस मन्वंतर में शासन करेगा। तेरहवें मनु का नाम देवश्रावण्य होगा और वह आध्यात्मिक ज्ञान में काफी बड़ा चरा होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उसके पुत्रों में से होंगे। तेरहवें मन्वंतर में सुकर्मा तथा सूत्रामा इत्यादि देवता होंगे। दिवसपति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्मुख तथा तत्वदर्श सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र का पुत्र जोगेश्वर भगवान के अंशावतार रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम बृहती होगा। वह दिवसपति के कल्याणार्थ कार्य करेगा। चौदह मनु का नाम इंद्र श्रावण्य होगा। उसके पुत्र का नाम उरु गंभीर तथा बुध होंगे। पवित्रगण तथा चक्षुषगण इत्यादि देवता होंगे और शुचि इंद्र होगा। अग्नि बाहु शुचि शुद्ध मागध तथा अन्य तपस्वी सप्तर्षि होंगे। हे राजा परीक्षित, चौदह मनांतर में भगवान बीताना के गर्भ में गर्भ से प्रकट होंगे और उनके पिता का नाम सत्यायन होगा। वह अवतार बृहद भानु के नाम से विख्यात होगा और वह आध्यात्मिक कार्यकलाप करेगा। हे राजन, मैंने अभी तुमसे भूत वर्तमान तथा भविष्य में हुए अथवा होने वाले 14 मनु का वर्णन किया। ये मनु कुल मिलाकर जितने समय तक शासन करते हैं वह तक हजार युग चक्र है। यह कल्प या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में भावी मनु का वर्णन नमक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यह भविष्य में जो होगा उनका भी वर्णन है। वैष्णव का इस तरह मनोभाव होता है, भविष्य में उनको भी चिंतन करते हैं। जिस तरह हमारे एक आचार्य देवकी नंदन, उन्होंने प्रणाम किया, हुयाचेन हवेन प्रभुर जतो दास। ये भावना क्यों मन में आया? चापाल गोपाल बहुत बड़ा अपराध किया था शिवाश पंडित के चरण में, इसीलिए कोरे हो गया था। तो महाप्रभु जब बोला शिवाश पंडित क्षमा करेंगे तो तुमको मुक्ति मिलेगा, तो शिवाश पंडित के पास गए। तो शिवाश पंडित बोला ठीक है, तुम घर में जाओ और हरि नाम करो और एक काम करो, जो मुख से वैष्णव का निंदन किया वो मुख से वैष्णव का महिमा कीर्तन करो। तो चापाल गोपाल ने सोचा, मैं तो वैष्णव को जानते नहीं तो महिमा कैसे कीर्तन करेंगे, वैष्णव को देखा ही नहीं। तो इसीलिए उन्हें घर चढ़कर तीर्थ भ्रमण करने के लिए गया, वैष्णव को दर्शन करेंगे। पहले कहा का कौन वैष्णव है, उनका गुण महिमा जानकर उनका महिमा कीर्तन करेंगे। तो सारा तीर्थ भ्रमण करके उन्होंने सारे वैष्णव को प्रणाम करना शुरू किया। वृंदावन वासी जातो, नवद्वीप वासी जातो, नीलाचल वासी जातो, सब वैष्णव को प्रणाम करने के बाद भी लगा है बहुत दूसरा दूसरा जगह बात किया। जे देशे वैश्य वैष्णवेरगण, यह छोड़कर और कोई जगह में वैष्णव है तुम्हें उनके भी प्रणाम करता हूं। हो सकते मैं अमेरिका एंटार्क्टिका महादेश कौन है पता नहीं है, कोई जगह में वैष्णव है तुम्हें उनके भी प्रणाम करता हूं। यह भी करने के बाद उनका भी सेटिस्फेक्शन संतुष्टि नहीं मिला। बाद में बोले नहीं, जो भूतकाल में हुआ है होयासेन और हवेन, जितने भविष्य में आएगा मैं सबको प्रणाम करूंगा। होयासेन हवेन प्रभुर जत दास, ताशवार चरण बंद दंते करी घास। तो इस तरह जो भावना है ये केवल निर्मल हृदय में इस तरह भावना आते हैं। हृदय जब तक निर्मल नहीं होगा तो ये भावना नहीं आते हैं। हमारे हृदय में हम देख सकते, जब भगवान के पास आते हैं, जब हरिनाम करते हैं, जब हृदय विनम्र होते हैं, तब बहुत सारे अच्छा उपलब्धि रियलाइजेशन आते हैं। लेकिन हृदय जब कठिन होते हैं तो कुछ अंदर में नहीं घुसते हैं। तो जितना हम विनम्र होते हैं, सरल होते हैं, इससे बहुत सारे उपलब्धि होते हैं। इस तरह हम देखते हैं जो ये चापाल गोपाल, बाद में उनका नाम देवकी नंदन हो, वो सेम व्यक्ति था, लेकिन पहले इस तरह उपलब्धि नहीं आया। बाद में क्यों आया? क्योंकि शिवाश पंडित का कृपा से, हरि नाम का कृपा से हृदय निर्मल हुआ, इस तरह भावना आ रहा है। तो हम भक्ति में जितना आगे बढ़ेंगे तो इस तरह अच्छा अच्छा उपलब्धि आएगा। जिस तरह पहले जब चाय पीते थे तब कभी नहीं लगता था हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई दूध पीने के बाद जब पता चलेगा वो गिलास में पहले कोई चाय पिया था तो कितना कष्ट लगते हैं, इतना गलती किया, वो गिलास में क्यों दूध पी लिया। तो पहले भी चाय पीता था, बाकेट बाकेट खत्म किया, लेकिन कभी नहीं लगा था एक गलती कर रहा है, लेकिन अभी दूध पीने के बाद गलती लग रहा है, वो गिलास में क्यों दूध पी लिया। सेम व्यक्ति है, क्योंकि ये भावना के परिवर्तन है। पहले इस तरह भावना नहीं था। तो इसी तरह जब हम जितना भक्ति में जितना आगे बढ़ेंगे उतना हृदय में उपलब्धि आएगा। तो आज एक इस तरह महान आचार्य जीव गोस्वामी का 13वां तिथि है। वैष्णव बहुत विनम्र होते हैं, जीव गोस्वामी रूप सनातन का भाई पो छोटे भाई कलर का अनुपम बल्लभ कलर का, जब उनका ताऊजी रूप सनातन घर छोड़ के चले गए महाप्रभु के निर्देश में, तो तब उनका उम्र था प्रभुपाद ने लिखा 10-12 साल था। तब उन्होंने सोचा मेरा पिता सब चले गए, मैं घर में क्या करूंगा, तो उन्होंने घर छोड़ के चले गए। जब घर छोड़ के आया पहले उन्होंने वो बांग्लादेश में था बाकला चंद्रद्वीप, तो नवद्वीप में महाप्रभु का जन्म स्थान में आया, तो तब महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला और ज्यादा दुखी हो गया, महाप्रभु चले गए पहले। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको सारे नवद्वीप दर्शन कराया और परिक्रमा भी कराया, और जो वो वर्णन भक्तिविनोद ठाकुर ने नवद्वीप धाम महात्म्य में वर्णन किया, नित्यानंद पहला परिक्रमा इस तरह नित्यानंद प्रभु किस तरह जीव गोस्वामी को कराया। यह वहां से उन्होंने वाराणसी गया और संस्कृत का विद्वान माने, और उसके बाद उन्होंने वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर रूप सनातन का अनुगत में रहे, खास करके रूप गोस्वामी पर शिक्षा लिया। उन्होंने रूप जीव गोस्वामी ने बहुत बार पंडित थे, कोई आचार्य का तो उन्होंने जो श्लोक लिखा है 4 लाख रचना किया। प्रभुपाद ने तत्पद में कहा, उन्होंने उनका जितना पुस्तक है कम से कम 25 पुस्तक का हमारे पास तथ्य मिलते हैं, उनमें से विख्यात है भागवत संदर्भ छठ संदर्भ। तो एक अच्छा कहानी है जीव गोस्वामी का। इस तरह एक बार रूप गोस्वामी को एक पंडित शास्त्र में पराजित करने के लिए आया। ये बांग्ला में एक कविता है लिखा है, उसका उनका नाम त्रिरत्न है, लेकिन प्रभुपाद ने वो कविता को पूरा समर्थन नहीं किया पूरा। उन्होंने कहा था इस तरह, वहां पर कुछ जीव गोस्वामी के बारे में बोला जो निंदन, तो प्रभुपाद ने उसका समर्थन किया नहीं। कहानी इस तरह है, तो दिग्विजय पंडित आया रूप गोस्वामी के साथ तर्क करने के लिए। तो रूप गोस्वामी ने पूछा आपका क्या उद्देश्य, तो उन्होंने बोला इस आपको शास्त्र युक्त में मैं हराना चाहता हूं। तो रूप गोस्वामी बोले इसके फालतू बात करना किया जरा दिन के साथ, बोले तो मैं लिख देता हूं मैं हार गया। तो उन्होंने विजय पत्र लिख दिया मैं हार गया। तो पंडित तो बहुत खुशी होकर कुटिया से जा रहे थे, तो जीव गोस्वामी ने पूछा क्या हुआ। तो जीव गोस्वामी को बोला इस तरह मैं उनका हरा दिया। तो जीव गोस्वामी ने बोला ठीक है, तो उनको तो हरा, तो मेरा सब थोड़ा चर्चा करो। तो जीव गोस्वामी के पास वो हार गया, तो उन्होंने बहुत अपमानित होकर चले गए। तो एक खबर जब रूप गोस्वामी के पास पहुंचा जी जीव गोस्वामी ने इस तरह हरा दिया, तो इस सहज लोग का कहना है इस तरह है, तो रूप गोस्वामी ने नाराज होकर जीव गोस्वामी को त्याग कर दिया। इस तरह तुम वृंदावन धाम में आकर इतना अहंकार क्यों, जमुना में नहाने के लिए गया, तो शुद्ध होने के लिए गया, प्रतिष्ठा के तरह शुक्र का मेल क्यों शरीर में लगा कर आया, इस तरह बोल के त्याग कर दिया। लेकिन प्रभुपाद ने इस तरह बात को समर्थन किया, प्रभुपाद बोले नहीं, रूप गोस्वामी ने बाहर से क्रोध प्रकाश किया लेकिन अंदर से बहुत खुश था। क्योंकि प्रभुपाद उसके बाद बोलता है ये शिष्य का कर्तव्य है, कोई गुरु को इस तरह पराजित कर सहन करना नहीं चाहिए। तो जीव गोस्वामी इस तरह हरा दिया था। जीव गोस्वामी जो शास्त्र रचना किया है आज तक जगत में सर्वश्रेष्ठ विद्वान रूप में परिचित है, और हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे इतना ग्रंथ लिखा है। आज तो हम कंप्यूटर में लिखते हैं, कोई डिक्टेट करते हैं, दूसरा आदमी लिखते हैं। यह तक व्यासदेव जब श्लोक रचना किया गणेश ने लिखा था, लेकिन जीव गोस्वामी को खुद को लिखना पड़ते थे, और ताल पत्ता पाम लीफ को काटकर एक श्लोक एक जगह में लिखते हैं तो दूसरा श्लोक लिखने तक सूखने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए दूसरा पत्ता लेकर तीसरा श्लोक लिखते हैं। तो जब एक नंबर श्लोक सूख जाते हैं तो उसको उल्टा करके फिर दो नंबर श्लोक लिखते हैं। तो इस तरह इतने भर उन्होंने विद्वान थे। और अभी ग्रंथ वितरण मैराथन चल रहा है, जीव गोस्वामी ही वास्तव में ग्रंथ वितरण का आचार्य है। श्रीपाद वैशिष्ठ प्रभु ने एक पुस्तक लिखा है और फैमिली बिजनेस, उन्होंने वहां देखा है ब्रह्मा का चार हाथ में एक हाथ में ग्रंथ है, तो उन्होंने वहां से ग्रंथ वितरण चालू किया। पहले देखा ग्रंथ चाहिए, तो हमारे जो गुरु परंपरा में है सब पुस्तक का बिजनेस करते थे। और कृष्ण भी गीता का उपदेश दिया, उपदेश क्यों दिया, ताकि दूसरा आदमी ग्रहण करेंगे पुस्तक के माध्यम। तो कृष्ण से शुरू करके ब्रह्मा से नारद से शुरू करके सब पुस्तक का बिजनेस किया था। और खास करके वृंदावन सर गोस्वामी हमें रूप सनातन अति अप्रकट होने के बाद जीव गोस्वामी सारे वैष्णव का नेता बने। जब तब उनकी जिम्मेदारी था गोस्वामी का सारे ग्रंथ सारे जगत में वितरण करना। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम श्यामानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी बात शिक्षा समाप्त किया, तब जीव गोस्वामी ने इनको कहा कि तुम एक ग्रंथ बंगाल में लेके जाओ और वहां प्रचार करो। तो केवल जीव गोस्वामी ग्रंथ लिखा नहीं, उन्होंने सिस्टमेटिकली प्लान किया किस तरह प्रचार करना चाहिए। तो फिर बंगाल में क्यों, हो सकता है बंगाली के गौरी वैष्णव को जीव गोस्वामी ज्यादा प्रेम था, ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण है श्यामानंद श्रीनिवास नरोत्तम ये बंगाल का भक्त है, उनके लिए दूसरा जगह जाके प्रचार करना थोड़ा कठिन होगा। और इनको जब उधर में जाना ही पड़ेगा, इसीलिए श्यामानंद को उड़ीसा, नरोत्तम को बांग्लादेश और श्रीनिवास आचार्य पश्चिम बंगाल इस तरह भेज दिया था पहले ग्रंथ लेकर। वो भी एक बहुत बड़ा कहानी है। लेकिन वहां से हम देख सकते जीव गोस्वामी का ब्रेन से परिकल्पना आया, हाँ ग्रंथ वितरण कितना जरूरी है। आज जगदीश पंडित का भी त्रिभाव तिथि है। जगदीश पंडित नित्यानंद प्रभु का वंश, नित्यानंद प्रभु का शाखा में है। उन्होंने कृष्ण लीला में गोपी थे। जगदीश और उनका भाई हिरण्य पंडित इनमें भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। जो हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में उनका घर पे एकादशी दिन प्रसाद भजन किया था, तो कितना महान भक्त थे वो लोग। तो आज उनका भी तिरुभाव तिथि है। हम इनका महान वैष्णव उनका चरण में प्रार्थना करते हैं, ताकि उनका कृपा से हम कृष्ण भक्ति में टिका रहे और कृष्ण भावना में तो आंदोलन के आगे बढ़ाते रहे। हरे कृष्ण प्रभुपात की, जगदीश पंडित प्रभु की, जीव गोस्वामी प्रभुपात की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदी। क्वेश्चन और कमेंट दो मिनट है।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुंदर से समझा ये मनवंतर के बारे में। मनवंतर जो आपने समझाया कि भविष्य में जो मनु महाराज आएंगे
मनवंतर,
तो ये प्रश्न है कि जो मनु महाराज होते हैं, जो भी मनु होते हैं, तो वो अपने जीवन के अंत में भगवत धाम जाते हैं कि यानी उनका भक्ति रहता है कि कैसे क्या होता है उनका सेवा?
इस तरह कोई गारंटी नहीं है, जिस तरह जाना ही पड़ेगा। मनु का पिता कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा को गारंटी नहीं है तो भगवत धाम जाएंगे, तो मनु का क्या है? शुद्ध भक्ति नहीं करके भगवत धाम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जब कल्प होते हैं, कल्प अंत में सब अवश्यकार हेल्पलेसली और महाविष्णु का शरीर में प्रवेश करते हैं, वहां सो रहते हैं, फिर जब जगत प्रकाशित फिर। लेकिन खास करके ये बड़ा जो पोस्ट में है, ये भगवान जानते भगवत भक्ति करके आगे बढ़ते हैं नॉर्मली।
हरे कृष्ण महाराज, आपने कहा कि ब्रह्मा जी के हाथ में ग्रंथ है, लेकिन हम सुनते हैं कि कलयुग में ग्रंथ की प्रथा चालू हुई। द्वापर युग तक तो केवल श्रवण पद्धति थी, श्रवण सुना जाता था, तो फिर ब्रह्मा जी के हाथ में तो हमने बनाए हुए चित्र में देखा, लेकिन वास्तव में ग्रंथ तब भी थे, क्योंकि वेद तो मूर्तिमंत रूप में है ना।
तो आपका कहा कि तो हाथ में जो पुस्तक बाद में दिया,
नहीं मैं यही कि सुना कि कलयुग में ग्रंथ निर्माण हुए, लिखन पद्धति और ग्रंथ, द्वापर युग में श्रवण पद्धति थी, तो वो कैसे?
ब्रजरी बहु, इस तरह ब्रह्मा जी तो अभी भी है, तो इस तरह अभी भी हाथ में ले सकते प्रभुपाद का ग्रंथ, किसी इस तरह नहीं जो उसी टाइम जन्म ग्रहण करने के बाद ही तुरंत हाथ में लेना पड़ेगा, अभी भी हाथ में ले सकते। ब्रह्मा ब्रह्म संगीत लिखा है, जिस तरह जब जन्म ग्रहण किया उसी टाइम हाथ में नहीं था, लेकिन बाद में जब ब्रह्म संगीत लिखा तब तो हाथ में रखना ही पड़ेगा, अभी भी ब्रह्म है तो हाथ में क्यों नहीं रहेंगे।
हरे कृष्णा, महाराज जो गोस्वामी जो तर्क करने वाले पंडित को विद्वान व्यक्ति को कौन से विषय पर कैसे डिफीट किया,
कौन से विषय में डिफीट किया वो विस्तृत वर्णना यह नहीं है, वो कविता भी नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वो कविता को इतना प्राधान्य नहीं दिया। उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा इस तरह कुछ सहजीय है वो लोग, क्योंकि जीव गोस्वामी ने सहजिया के जो प्राकृत रस उसका समर्थन किया नहीं, उसका खंडन किया, इसीलिए कोई कि सहजिया ने जीव गोस्वामी पर नाराज थे, तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि इनको तो इनका गुरुदेव ने त्याग किया है, रूप गोस्वामी त्याग किया, इसीलिए उनको थोकरा बनाना कुछ कहानी है, इसीलिए वो कौन सा फिलोसफी दिया वो हमारे पूर्वतन आचार्य ज्यादा विस्तृत किया नहीं।
जो नाम बता रहे थे आप दिग्विजय पंडित का,
इना नाम यह वर्णन नहीं है,
वो
जो कविता का नाम है त्रिरत्न, तीन रत्न था, रूप सनातन और जीव गोस्वामी, वो कविता का नाम था त्रिरत्न था।
अच्छा, थैंक यू।
ओके, अभी ग्रंथ मैराथन चल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी सावित्र।